रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। 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 बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दिया, बहुत सुंदर, शाबाश। स्वर्गीय लाला भगवान दास कत्याल, जिनके सुपुत्र हैं श्री वीरेंद्र कत्याल और बहू हैं श्रीमती मंजू कत्याल, स्वामी जी महाराज के निर्वाण के उपरांत कुछ ही दिनों के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उस समारोह में वह फरमाते हैं, मैं 1932 में स्वामी जी महाराज से पहली बार मिला था। 28 साल स्वामी जी महाराज की कृपा के पात्र रहे वह। उनके अपने शब्द हैं, उनसे मिलन के उपरांत मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। ऐसे समय भी आए जब मुझे अपने संकटों का बखान उनके श्री चरणों में रखना पड़ा। सामान्यतः साधकजनों, स्वामी जी महाराज से कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लाला जी उनके अति नजदीक थे, बहुत निकट थे, अतएव अपनी चर्चा भी कर लेते थे, अपने दुखों की संकटों की चर्चा भी कर लेते थे, और कालांतर में दूसरों के दुखों की चर्चा भी कर लेते थे। हर एक को संभवतया स्वामी जी महाराज के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था। लाला जी फरमाते हैं, जब कभी अपना संकट कहा या किसी दूसरे का संकट कहा, स्वामी जी महाराज ने उत्तर में एक शब्द नहीं कहा, कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, कभी वरदान नहीं दिया, लेकिन अनुभव में ये आया
संकट दिन प्रतिदिन घटना शुरू हो गया, विपदा दिन प्रतिदिन टलनी शुरू हो गई, रोग दिन प्रतिदिन खत्म होता चला गया। ऐसी परंपरा रही है सदगुरुजनों हमारी। स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व से यही बोध होता है। लालच भी फरमाते हैं, अनेक सारी सिद्धियों के मालिक, लेकिन कभी किसी सिद्धि का प्रदर्शन आशीर्वाद के रूप में या वरदान के रूप में नहीं किया। मुझे बहुत लज्जा आती है ये कहते हुए भी, जब मेरे पास इधर लोग आते हैं और खड़े रहते हैं, आशीर्वाद दीजिए, क्या दूं, मुझे समझ नहीं आती, बहुत छोटा महसूस करता हूं, बहुत लज्जित शर्मिंदा महसूस करता हूं। ये स्वामी जी महाराज का सिस्टम नहीं है। अभी गुरदासपुर से आया, बहुत सी डाक पीछे से इकट्ठी हुई हुई थी। दो तीन दिनों में लगभग 100 चिट्ठी का जवाब देना था। उसमें एक चिट्ठी थी, 3 बड़े पृष्ठ, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक छोटे छोटे शब्दों में अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी। यदि शबनम जी लिखें उसे तो शायद 10 पृष्ठ हो जाएं। इतनी लंबी चिट्ठी, सोचा तत्काल तो इसे पढ़ नहीं सकूंगा, तत्काल इसे पढ़ा तो बाकी चिट्ठियां जवाब देने को रह जाएंगी। 2-3 दिन के बाद उस चिट्ठी को पढ़ने की बारी आई। बात तो इतनी ही थी लिखी हुई कि पिछले 6 माह से मेरे पति मेरी ओर देखते भी नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्ट कार्ड पर इतना ही लिखा, देवी जितना समय तूने चिट्ठी लिखने पर लगाया है, इतना समय राम राम जपती तो कुछ पुण्य की कमाई होती। चिट्ठी पढ़वाने में इतना समय मेरा भी गया, इतने समय में अपने लिए या किसी दूसरे के लिए जाप करता तो अपने या उसके पाप नष्ट होते। देवी मुझे लगता है तुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आपने स्वयं लिखा है कि जो कुछ हुआ है इसमें गलती तो मेरी भी है, उनकी क्या गलती है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको सुधारने की जरूरत है, आप सुधरो। बहुत दफा साधकजनों, अपने आप को सुधारना बहुत कठिन बात है, इसलिए इस मार्ग को कोई अपनाता नहीं। दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं, उनकी गलतियों को बखान करना, बढ़ा चढ़ा के चर्चा करना, बढ़ा चढ़ा के उनका चित्रण करना, पिक्चराइज करना उनको, ये हमारे स्वभाव हो गए हुए हैं। प्राय साधक शुरू मिलने वाले साधक जो बाहर खड़े होते हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि क्या काम है, क्यों मिलना है, तो बतलाने से कतराते हैं। हु आर यू टू आस्क। यदि बताएंगे तो झूठ बताएंगे, बाहर कुछ बता के तो भीतर आएंगे, मेरे पास भीतर पहुंचते हैं तो बिल्कुल अलग बात करते हैं। इस स्थान पर आके भी झूठ बोलना, बेईमानी करनी या हेराफेरी करनी कितना बड़ा पाप है। क्या कमाई करके यहां से ऐसे साधक जाते होंगे। उदाहरण दिया, मुझे यकीन है उस साधक ने बाहर राजीव खन्ना जी को यही कहा होगा या शबनम जी को यही कहा होगा, मेरे घर की समस्या है, डाइवोर्स केस चल रहा है। शबनम जी ने द्रवित होके अंदर जा, राजीव जी भी, उनको भी लगा होगा कोई दुखी है, अंदर जाना चाहिए। जैसे कोई अंदर दुख निवारण केंद्र बना हुआ है, मेरे पास पहुंच के क्या कहते हैं, क्या मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जब मैं तेरे पांव दबा सकूंगा। क्या भाई इतनी सी बात के लिए ही आप भीतर आए हो? क्या कहे व्यक्ति ऐसे साधकों को, कितना समय बर्बाद होता है इन सब बातों में। मेरा समय तो जो है सो है ही, लेकिन साधक अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। कल चर्चा चल रही थी प्रभु राम के सिर के ऊपर पहाड़ जैसा संकट आना पड़ा है, डगमगाए नहीं, डोले नहीं। आज भी अंतिम पृष्ठों में आपने पढ़ा, संकट संकुल वन में जाना था लेकिन कोई खेद नहीं है। राजा दशरथ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सारे अयोध्या वासी रो रहे हैं, वहां का वातावरण रुदन वातावरण है। राम हर्षित, शांत। परमात्मा कहते हैं हर्ष अमर्ष निंदा स्तुति सुख दुख में जो शांत रहता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। गीता जी के बलाढ्य शब्द, अविचल रहने वाला व्यक्ति, शांत रहने वाला व्यक्ति, न डामाडोल होने वाला न डगबगाने वाला व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। मां कौशल्या के महल में उनसे चर्चा करके कल लक्ष्मण को उपदेश दिया, मां कौशल्या की सेवा में भी कुछ शब्द कहे, वहां से विदा लेके तो सीता के महल में अर्थात अपने महल में जाती है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया हुआ है। रामचरितमानस में वर्णन आता है इनकी आपसी चर्चा कुशल्या माँ की और प्रभु राम की हो रही होती है मातेश्वरी कुशल्या के महल में, वहीं पर सीता का आगमन होता है। चर्चा चल रही थी उस वक्त, राम सीता का क्या होगा, तुम्हें बोध नहीं किस लाड प्यार से हमने उसे पाला है, हमने कभी उसे उसके पांव कभी जमीन पर नहीं रखने दिए। दीपक की बत्ती बुझने वाली होती, सीता वहां होती तो हमने कभी उसे ये नहीं कहा कि सीते जानकी इस बत्ती को बुझा दे, शांत कर दे। हमने इतना भी कष्ट कभी उसे नहीं दिया। मैं उसे जंगल में नहीं जाने दूंगी। सारे के सारे अयोध्यावासी विलाप कर रहे हैं, तेरे वियोग में ये विलाप चलता रहेगा, हम सब रोते रहेंगे बिलखते रहेंगे। किसी कोने में बैठी मेरी जानकी भी चुपचाप आंसू बह रही होगी। पूछने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन यदि मैंने पूछ लिया, बिटिया क्यों रो रही है, स्वयं भी मां रो रही होगी, लेकिन इस वक्त कह रही हैं, मैं जब सीता को पूछूंगी बिटिया क्यों रो रही है, और जब जानकी मुझसे कहेगी मां अभी कितने वर्ष बाकी रह गए, मैं क्या जवाब दूंगी, ये मेरे से देखा सुना नहीं जा सकेगा। मैं तो यही कहूंगी पुत्री, अयोध्या की राजनीति ने तेरा सुख चैन छीन लिया। ये सब बातें सीता खड़ी सुन रही है, इसी बीच प्रवेश करती है भीतर। सारी चर्चा आपसी सुन ली है उसने, ये सूचना भी उसे मिल गई है कि राम जंगल जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। सीता कहती है, मेरे मन में इस वक्त दो ही विकल्प उठ रहे हैं, या तो प्रभु राम के साथ मेरा तन और प्राण दोनों जाएंगे, यदि देह यह रहा तो प्राण तो उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे, मानो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। इस वक्त आंखों में आंसू है, अभी प्रभु राम ने समझाना शुरू ही किया है जंगल जाने के नुकसान कष्ट दुख बयान कर रहे हैं, मानो ये निर्णय दे रहे हैं सीता तेरा जाना जंगल में मेरे साथ उचित नहीं रहेगा। अब आंखों में आंसू है, अभी सीता ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। जब प्रवेश किया है तो मां कुशल्या के पांव छुए होंगे, प्रभु राम के चरण छुए होंगे, लेकिन अभी तक कोई शब्द बोली नहीं है सीता। आंखों में आंसू हैं तो मां कुशल्या से कहती हैं, मातेश्वरी ये आंसू इसलिए नहीं कि राम जंगल में जाएंगे और मुझे वियोग सहना पड़ेगा, ये आंसू इसलिए नहीं, यदि राम मुझे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं वहां के दुख के भय के भी ये आंसू नहीं है। पीठ पर हाथ रख के तो मां कुशल्या पूछती है, बिटिया फिर क्यों रो रही हो, कह मां, मेरे जीवन का आज पहला दिन है जब तेरी उपस्थिति में मैं राम के साथ बात करूंगी। इससे पहले साधकजनों, कभी मां कुशल्या के सामने, अपनी सास के सामने, ससुर की बात तो छोड़िए, अपनी सास के सामने कभी सीता ने अपने पति से कोई बात नहीं की। आज रघुवंश की परंपरा टूट जाएगी। किस ऊंचाई में श्री रामायण जी जिए हैं, किस ऊंचाई पर लोग थे उस वक्त, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं मां, आज तेरे सामने मुझे राम से बात मुख खोलना पड़ेगा। अब बातचीत करती है जो कल आपने पढ़ी थी, अब बताती है मुझे तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है राम, मैं पूर्णतया शिक्षित हूं, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत शिक्षा दी हुई है, इत्यादि इत्यादि ये सब बातें आप कर चुके हैं। सीता का जंगल जाना भी निश्चित हो जाता है तो लक्ष्मण जी भी तैयार तैयार ही थे, उन्हें कौन रोक सकता है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। जहां राम वहां लक्ष्मण, ये अलग हो ही नहीं सकते, अलग रह ही नहीं सकते। जहां ज्ञान होगा भक्ति होगी, वहां वैराग्य भी होगा ही होगा। विशेष प्रयत्न उसे करने की जरूरत नहीं, सभी हो गया है साधक जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।